ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिली। दिल्ली सरकार ने 90,000 बुजुर्गों को 5 महीने से लंबित पेंशन जारी की। राजधानी में आज दिनभर वर्षा होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या बनी रही। विकास मंत्री गोपाल राय ने समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को गांव में विकास कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस वर्ष बजट में घोषित महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रूपये मासिक राशि अभी तक नहीं मिली है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त की। सीबीआई ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया है, जिस पर राउज एवेन्यू अदालत मंगलवार को विचार करेगी। श्री केजरीवाल 27 जून से न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली और सीबीआई मामले में जमानत की मुख्यमंत्री की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी है, क्योंकि उन्होंने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। दिल्ली सरकार ने 90,000 बुजुर्गों को 5 महीने से लंबित पेंशन जारी कर दी है। एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, इसके अतिरिक्त सरकार बाकी बचे 10,000 बुजुर्गों की पेंशन आज शाम तक जारी करेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 4 लाख वृद्धावस्था पेंशनधारकों में 1 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन का कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से मिलकर आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पेंशनधारकों को पिछले 5 महीनों से उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा रोक कर रखा था। उन्होंने कहा कि पेंशन के नियमों की वजह से जब तक केंद्र सरकार से उनका हिस्सा नहीं मिल जाता, तब तक पेंशन जारी नहीं किया जा सकता।
कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन का ट्रांसफर हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा।
राजधानी में आज दिनभर वर्षा होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या बनी रही। यातायात पुलिस ने बताया कि उन्हें यातायात समस्याओं की 15 और जलभराव की 12 शिकायतें मिली हैं। दिल्ली के धौलाकुआं, दिल्ली कैंट, रिज रोड, सरदार पटेल मार्ग, जीटीके रोड, मोतीबाग चौक, रोहतक रोड, रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग सहित अनेक क्षेत्रों में लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। इसी बीच राजधानी में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस स्थिति के लिए दिल्ली सरकार के जल बोर्ड से जुड़े मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन को जिम्मेदार बताया। एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जल जमाव की समस्या का मूल कारण सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और हर विभागीय काम में आर्थिक लाभ प्राप्त करने की चाह है।
सौरभ भारद्वाज ने एक ऐसा आदेश निकाला, उनकी व्यक्तिगत स्वीकृति के बिना कोई अधिकारी 1 रुपये का भी खर्चा नहीं कर सकता। और बार बार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी उनको समस्याएं बता रहे थे कि कहाँ आइडेंटिफाई पॉइंट्स हैं, कहाँ पानी का जलभराव होता है, कहाँ हमें ये मदद करने की जरूरत है, कहाँ हमें ये लाइन्स खोलने की जरूरत है, उसके लिए हमें इतनी फंडिंग चाहिए। लेकिन दोनों, क्योंकि मंत्रियों ने आदेश दिया हुआ था, एक भी अधिकारी अपनी मर्जी से पैसा खर्च नहीं करवा।
दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को गांव में विकास कार्य समय से पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। इस बैठक में श्री राय के साथ विकास विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विकास मंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के गांवों को विकसित करने के लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी, उनकी समीक्षा बैठक की गई। विकास मंत्री राय ने ग्राम विकास बोर्ड द्वारा सभी स्वीकृत स्कीमों की विस्तृत रिपोर्ट 10 सितंबर को होने वाली बैठक में पेश करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री राय ने कहा कि सरकार गांव में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 लागू करने का निर्देश दिया है। दिशा निर्देश मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित किए गए थे। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देश निवारक शिक्षा, विभिन्न हितधारकों की जवाबदेही, रिपोर्टिंग प्रक्रिया, संबंधित कानूनी प्रावधान, समर्थन और परामर्श और एक सुरक्षित वातावरण के लिए उपाय प्रदान करते हैं। दिल्ली की महापौर डॉ शैली ओबेरॉय ने दिल्ली नगर निगम के सचिव के चुनाव प्रक्रिया को शुरू करने का आज निर्देश दिया है। एक आधिकारिक नोटिस के द्वारा महापौर ओबेरॉय ने सूचित किया कि इस चुनाव के द्वारा वार्ड समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ साथ वार्ड समिति से स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव होगा। चुनाव घोषित करने के लिए उन्होंने पिछले वर्ष 5 अगस्त के दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय नामक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया है कि इस वर्ष बजट में घोषित महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रूपये मासिक राशि अभी तक नहीं मिली। एक प्रेस वक्तव्य में श्री विधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा ये वायदा केवल लोकसभा चुनावों को देखकर किया गया था। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि उस वादे को वो कब पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त श्री विधूड़ी ने बुजुर्गों की पेंशन, आयुष्मान भारत योजना और नए राशन कार्ड बंद होने का आरोप लगाते हुए इस पर भी आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से अनुरोध किया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू कराने के लिए हस्तक्षेप करें ताकि गरीबों को अस्पताल में 5 लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त मिल सके। दिल्ली मेट्रो के तीसरे फेज के कॉरिडोर पर उपलब्ध मेट्रो सेवाओं के शुरू होने का समय इस रविवार सुबह 8 बजे से बदलकर सुबह 6 बजे और सुबह 7 बजे कर दिया गया है।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा, नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मुंडका से ब्रिगेडियर होशियार सिंह और बदरपुर बॉर्डर से राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ पर चलने वाली मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। वहीं मजलिस पार्क से शिव विहार, बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम और ढांसा बस स्टैंड से द्वारिका पर चलने वाली मेट्रो सेवाएं सुबह 7 बजे से शुरू होंगी। डीएमआरसी ने बताया है कि इन कॉरिडोर पर सेवा शुरू करने के समय में संशोधन होने से न केवल यात्रियों को बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को भी लाभ होगा। मेट्रो नेटवर्क के अन्य सभी कॉरिडोर पर नियमित सेवाएं पहले की तरह अपने निर्धारित समय सुबह 6 बजे पर उपलब्ध रहेंगी। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 16 अगस्त से शिल्प दीदी महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आई शिल्प दीदियों के द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने शिल्प दीदियों से बातचीत की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को जाना और समझा। श्री सिंह ने कहा कि ये महोत्सव शिल्प दीदियों को अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने तथा अपने हस्तशिल्प निर्माण के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक अनूठा मंच प्रदान करता है। ये महोत्सव 31 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का लोकार्पण किया। श्री नड्डा ने कहा कि ये पोर्टल देश के लिए सभी एलोपैथिक पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है और ये स्वास्थ्य तंत्र को डिजिटल बनाकर ही संभव है। श्री नड्डा ने कहा कि ये रजिस्टर इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए भी ऐसा ही रजिस्टर शुरू करेगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश भर के डॉक्टरों का प्रामाणिक डेटा महत्वपूर्ण है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी युग में भारत 5G नेटवर्क से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर मोबाइल रेडियो संचार 5G नेटवर्क विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5G नेटवर्क के कारण संचार के क्षेत्र में आई क्रांति ने शिक्षा, विज्ञान, औद्योगिक और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के कोंडली इलाके में नाले में डूबकर हुई मां बेटी की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और पार्टी नेता दिलीप पांडे ने आज कहा कि हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के अधीन आने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण को जमकर फटकार लगाई है और उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कुलदीप कुमार ने कहा कि 31 जुलाई को कोंडली विधानसभा में एलजी शासित डीडीए द्वारा निर्मित एक नाले में गिरकर एक बच्चे और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। नई दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग डीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज पुरानी दिल्ली 6 को 109 रन से हरा दिया। आर्यन राणा के 75 रन और जोंटी सिद्धू के 50 रन की बदौलत दिल्ली किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में पुरानी दिल्ली 6 केवल 12 ओवर और एक गेंद में 108 रन पर सिमट गई। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए सुमित कुमार ने 22 रन देकर 4 विकेट जबकि जोंटी सिद्धू ने 8 रन देकर और मनी ग्रेवाल ने 28 रन देकर 3-3 विकेट हासिल किए। आकाशवाणी की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती और अतिरिक्त महानिदेशक एल मधुनाग ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में पौधे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत देशभर में लोग उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण अभियान में भाग ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर मध्यम से तेज वर्षा होती रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा बारिश के चलते वायु गुणवत्ता के स्तर में सुधार देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिली। दिल्ली सरकार ने 90,000 बुजुर्गों को 5 महीने से लंबित पेंशन जारी की। राजधानी में आज दिनभर वर्षा होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या बनी रही। विकास मंत्री गोपाल राय ने समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को गांव में विकास कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस वर्ष बजट में घोषित महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रूपये मासिक राशि अभी तक नहीं मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।